تفسیر سورت المعارج مکی سورت ہے، دو رکوع اور 44 آیات پر مشتمل، الفاظ کلمات کی تعداد 241، حروف 1095، اس کا ایک اور نام بھی ہے اور وہ نام ہے سألَ سائل، سألَ سائل، تو اس سے متعلقہ اس کا یہ دوسرا نام ہے۔ سورۃ المعارج میں جو اس کا یہ جو نام المعارج ہے، یہ اس کی آپ دیکھیں تو لیا گیا ہے آیت نمبر 3 سے، معارج اور عین را جیم، اور اس کے معنی ہے سیڑھی کے، درجے کے۔ اس کا موضوع اور مضمون قیامت اور آخرت کا اثبات ہے، اور اس کے ساتھ ہی کفار کو تنبیہ کی گئی ہے اور ان کو ڈرایا گیا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، سأل سوال کیا، سائل سوال کرنے والے نے، بعذاب واقع ایک واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں۔ اب آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک اہل مکہ کیا کر رہے تھے، ایسے سوالات کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب سے ڈرایا ہے۔ کیا کہا؟ سأل سائل بعذاب واقع، کہ بڑی عجیب بات ہے کہ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے۔ اور ویسے آپ دیکھیں کہ سأل کے معنی ہوتے ہیں جیسے سوال کرنا، اور جب سأل کے بعد با جو ہے اس کی پریپوزیشن آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں مطالبہ کرنا۔ یہ کہتے ہیں نا جیسے آپ کسی سے بات کرتے ہیں، آپ کوئی اس سے سوال پوچھتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا پوچھنا، تو با کے ساتھ جو ہے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے جیسے مذاق اڑانا یا جلدی کرنا یا مطالبہ کرنا۔ تو اہل مکہ کیا کر رہے تھے کہ جب ایسی آیات اور ایسی صورتیں نازل ہو رہی تھیں، مکی دور میں پے در پے ایسی صورتیں نازل ہو رہی تھیں جس میں عذاب کے واقعہ ہونے کی ہولناک کی اور اس کی شدت جو تھا اس کا اظہار تھا، تو اہل مکہ سنتے تو پھر اس کا مذاق اڑاتے۔ جیسے آپ 30واں پارہ سورۃ نبا، اس میں کیا ہے، اما یتساءلون عن النبا العظیم الذی هم فیہ یختلفون، اس میں بھی کیا ہے کہ اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ سوال پوچھتے ہیں۔ تو گویا کہ مکہ کی گلیوں میں، ان کے چوکوں میں، ان کی محفلوں میں، ان کی مجلسوں میں ایک ہی سوال تھا کہ یہ کہتا ہے کہ قیامت آ جائے گی، کب آئے گی قیامت؟ کہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں، ہم اللہ کا انکار اور آخرت کا انکار، تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم رسول اور قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں تو ہم پکڑے جائیں گے، پھر ہم پکڑے کیوں نہیں جاتے، پھر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ تو یہاں پر بھی ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے۔ کیوں مانگا؟ مذاق کے طور پہ، انکار کے طور پہ، اور ایسے عذاب کے بارے میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے جو کہ واقعہ ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے لیسا کوئی نہیں ہے، لہو اس کو، دافع ہٹانے والا۔ اور جب یہ واقعہ ہونے والا عذاب واقعہ ہو جائے گا، جیسے سورت واقعہ میں کہا کہ واقعہ، سورت الحاقہ، سورت القارعہ، سورت الغاشیہ، مختلف اس کے نام ہیں نا قرآن میں، زلزال، تو جب یہ ہو جائے گا تو اس کے واقعہ ہونے کو کوئی دفع نہ کر سکے گا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مطالبہ کرنے والا، یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ اس سلسلے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سوال پوچھا تھا، یہ پوچھا تھا نضر بن حارث بن قلدہ نے، نسائی اور دوسرے محدثین نے अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह से यह रवायत नकल की कि नदर बिन हारिस बिन कल्दा ने कहा था, क्या बात कही थी, सूरत अनफाल की आयत 32, सूरत अनफाल की आयत 32 में ये बात उसका मुतालबा है, क्या, اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء اوتنا بعذاب الیم. تو اس نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ خدایا اگر یہ واقعی تیری ہی طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر دردناک عذاب لے آ. تو ایک رائے یہ ہے کہ اس کا مطالبہ کرنے والا تھا کون, نذر بن حارث بن کلدہ. دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد تھا ابو جہل. ابو جہل نے یہ بات کہی تھی جو سورۃ انفال کی آیت 32 میں ہے, ٹھیک ہے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی قوم کے لیے عذاب کی بد دعا کی تھی. کب آپ نے یہ بد دعا کی؟ کہ اہل مکہ جب مسلسل ستا رہے تھے اور بار بار آپ کو زج کرتے تھے اور آپ سے کہتے تھے کہ یہ عذاب کب آئے گا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک موقع پر جو ہے وہ اللہ تعالی سے جو ہے وہ بد دعا کی. آپ نے اللہ تعالی سے کہا کہ اے اللہ تعالی ان پر جو ہے کچھ نازل کر. اور کہتے ہیں کہ وہ جو قحط آیا تھا, قحط سالی اہل مکہ پر, یہ آپ کی بد دعا کا ہی نتیجہ تھی. تو جب یہ واقعہ ہونے والا عذاب واقعہ ہوگا دنیا میں, جیسے قحط سالی اور یا پھر غزوہ بدر میں یہ بڑے بڑے لوگ مارے گئے, یہ بھی ایک عذاب کی شکل تھی, اور یا پھر یہ کہ جب قیامت میں آئے گا تو کوئی اس کو واقعہ کرنے والا نہ ہوگا. اور بدر میں کیا ہوا, یوم الفرقان, مکہ کی ہیرے جو تھے, بڑے بڑے سردار جو تھے, وہ غزوہ بدر کے میدان میں ڈھیر ہو گئے. تارج الملائکہ, اب آپ دیکھیں کہ فرشتے چڑھتے ہیں اس کے پاس, کس کے پاس, آیت نمبر 3 میں جو ہے بتایا گیا کہ من اللہ ذی المعارج. تو یہ کون ہے, اللہ کی طرف سے. تو اللہ کی طرف فرشتے جاتے ہیں جو کہ عذاب لے کر آتے ہیں, اور اللہ کی طرف فرشتے جاتے ہیں جو کہ اللہ سے اللہ کے احکامات لے کر آتے ہیں. من اللہ ذی المعارج, تو یہی اللہ جو ہے جو کہ درجوں والا ہے, جو کہ معارج والا ہے, وہ جب عذاب بھیجے گا تو اس عذاب کو کوئی دفع نہیں کر سکے گا. ذی المعارج کے مفسرین نے 3 معنی بیان کیے ہیں. ایک اس کے معنی ہے ذی السماوات, آسمانوں والا, آسمانوں والا. تو کیسے اللہ آسمانوں والا, ایک, دوسرا, تیسرا, چوتھا. تو اصل میں اس کے معنی یہ ہیں کہ آسمان اگر 7 ہیں تو 7 سٹیپ ہوئے نا اللہ تک پہنچنے کے لیے. اور معارج کسے کہتے ہیں, معارج معرج کی جمع ہے, جس کے معنی ہے زینے یا سیڑھی کے, ایسی چیز کے جس کے ذریعے سے اوپر چڑھا جائے. تو اللہ تعالی کو جو معارج کہا گیا تو اس کے معنی کیا ہیں, یاد رکھیے گا کہ یہ جو لفظ معارج ہے, معراج بھی اس کی جمع ہے اور معراج بھی اس کی جمع ہے. تو رسول اللہ جب معراج پر گئے تھے تو کہاں گئے تھے, بلندی پر گئے تھے نا. تو یہ جو عرجہ ہے نا, یہ جو ہے معارج کا لفظ, اس کا روٹ کیا ہے, عین لاجیم. اس کے اندر 2 باتیں بنیادی طور پر پائی جاتی ہیں, اس کو آپ یاد کریں کہ معارج کے اندر 2 باتیں خاص طور پر پائی جاتی ہیں. ایک ہوتا ہے جھکاؤ اور ایک ہوتا ہے بلندی, جھکتے ہیں نیچے کو اور بلند ہوتے ہیں اوپر کو. اچھا, جو لنگڑا ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے آرج. اب لنگڑا کیا کرتا ہے, لنگڑا سیڑھی پر چڑھنے کے لیے پہلے وہ جھکتا ہے, نیچے کو ہوتا ہے, پھر وہ اوپر چڑھتا ہے. جھکاؤ پھر بلندی, یاد رہے گی یہ بات. آرج لنگڑے سے یاد رکھیں کہ لنگڑا جب, جیسے جب لنگڑا 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 کر چلتا ہے تو اچھلتا ہے نا, نیچے کو ہوتا ہے پھر اوپر کو ہوتا ہے. تو سیڑھی پر چڑھنے کے لیے بھی کیا کرتے ہیں, پہلے نیچے کو جھکتے ہیں پھر اوپر ہوتے ہیں. تو بلندی پر چڑھنے کے لیے کیا ہے کہ سیڑھیاں چڑھی جاتی ہیں نا, تو سیڑھی پر چڑھنے والا جب سیڑھی پر چڑھتا ہے تو پہلے آگے کی طرف نیچے کو ہوتا ہے, جھکتا ہے, फिर वो स्टेप ऊपर रखता है तो ऊपर हो जाता है, फिर वो नीचे झुकता है, फिर वो स्टेप ऊपर रखता है तो ऊपर हो जाता है। तो अराजा फिसलम, सीढ़ी पर या जीने पर कदम रखना, तो बुलंदी पर चढ़ना आम चलने की निस्बत मुश्किल होता है। इसी तरह जो है आरज के मानी लंगड़ा कर चलना, और आरज लंगड़ा, और लंगड़ा के चलने में जो है दो बातें पाई जाती हैं कि आगे को झुकाव भी होता है और बुलंदी पर चढ़ने जैसी दुश्वारी भी होती है। तो मेराज के मानी बुलंदी पर चढ़ने का जरिया, यानी सीढ़ी, जीना, बुलंद जगह जिस पर चढ़ा जाता है। तो क्या बात पता चली इससे कि झुकाव और बुलंदी, तो अगर बुलंदियों पे जाना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। जो आला जर्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगुं होकर भरा करती है पैमाने। अगर सुराही जो है लंबी सी उसकी गर्दन होती है, अगर वो झुके ना कभी पानी नहीं भर सकती, अगर झुके ना तो पानी नहीं भर सकती। अगर इंसान में आजी और इंतसारी ना हो जन्नत में नहीं जा सकता। आला इखलाक, आला किरदार, झुको, आजी, नरमी। बहरहाल अब यहां पे सवाल ये है कि मारिज का लफ्ज किसके लिए आया, मिनल्लाह जिल मारिज, वो अल्लाह जो है वो जिल मारिज जिस समावात, आसमानों वाला है। तो एक आसमान के बाद दूसरा आसमान, जैसे कि एक जीने के बाद दूसरा जीना, सीढ़ियों वाला ही है ना। दूसरे इसके मानी किए जाते हैं जिल फवादिल व नाम, जैसे अल्लाह का फदल होता है ना, तो अल्लाह नेमत और एहसानात वाला है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अल्लाह बहुत एहसानात, अल्लाह के एहसानात है इंसानों पर। तो जिल मारिज गोया के बहुत एहसानात वाला। तीसरे इसके मानी किए गए हैं मारिज के जन्नत के दर्जात, अल्लाह बड़े जन्नत के दर्जात वाला है, वो बड़ा बुलंद और बाला जात है, बुलंद से बुलंद मकामात का मालिक है। और जो है उस अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा जो इतना बुलंद है कि उस अजाब को फिर कोई हटा नहीं सकता। अब ये मुतालबा कर रहे हैं ना, फिर हटा नहीं सकेंगे। तो मिनल्लाह जिल मारिज को आप पहली दो आयतों से भी मिलाकर पढ़ें और आप चौथी आयत से भी मिलाकर पढ़ें। वो अल्लाह जो इतना बुलंदी पर है, जो इतना दर्जों पर है, तारुजुल मलाइकातु, चढ़ते हैं उसकी तरफ फरिश्ते। तो तारुजु वही ऐन राजीम, तो चढ़ते हैं उसकी तरफ फरिश्ते, वह रूहू और रूह। तो मलाइका तू का तर्जमा एक फरिश्ता नहीं करना, ये जमा के तौर पे आया है। तो उसकी तरफ जो है फरिश्ते चढ़ते हैं, वह रूहू और रूह। रूह से एक इसके मानी लिए गए हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। वैसे तो फरिश्तों में वो शामिल हैं, लेकिन उनकी शान और उनकी अजमत के लिहाज से उनका अलग जिक्र किया गया, खसूसी तौर पर इनका अलग जिक्र। दूसरे इसके मानी बयान किए जाते हैं रूहें, इंसानी रूहें भी मरने के बाद आसमान पर ले जाई जाती है ना। तो तारजुल मलाइका तू वर रूह, चढ़ते हैं उसकी तरफ फरिश्ते, सारे फरिश्ते, वर रूह इंसानी रूहें या फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम, या फिर दोनों मुराद हैं। इलैही किसकी तरफ, अल्लाह जिल मारिज उसकी तरफ, फी यौमिन एक ऐसे दिन में, काना मिकदारहू जिसकी मिकदार है, 50,000 सनतिन 50,000 साल। तो अब यहां पे बताया जा रहा है कि उसकी तरफ फरिश्तों को और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को चढ़ने के लिए इतना वक्त लगता है जैसे कि 50,000 साल। तो एक दिन के अंदर नहीं, 2 दिन के अंदर नहीं, बल्कि उस वहां तक पहुंचने के लिए जो है बहुत वक्त लगता है। और आप जो, आपको ये बात तो याद ही है कि अब अल्लाह के यहां का जो शुमार है वो हमारे यहाँ के जो है वो शुमार के लिहाज से यहां पर किया गया है, वरना तो कोई शुमार नहीं है। पूरी दुनिया की जिंदगी, जब इंसान कयामत के दिन जो है वो वहां पे जाएगा, तो फिर उसको ऐसे लगेगा जैसे कि एक सुबह या फिर एक शाम, इतनी मुख्तसिर सी उनको ये जिंदगी जो है वो लगेगी। फिर इसी तरह आप देख लीजिए सूरत सजदा आयत 5 में आप पढ़ चुकी कि उसके यहां दिन की मिकदार तुम्हारे शुमार के 1,000 साल के बराबर है। वहां पे 1,000 साल आया और यहां पे 50,000 साल आया। तो इससे क्या बात पता चलती है कि दरअसल जो है वो फिर चूंकि एक जगह 50,000 साल, एक जगह 1,000 साल और हमारे यहाँ की गिनती मुख्तलिफ, तो इसके फिर असल में मानी क्या है। उलमा ने इसके चार मानी बयान किए हैं। पहला कॉल ये है कि इससे वो मुसाफत मुराद है जो अर्श अजीम से असफल साफेलीन यानी जमीन के सातवें तबके तक है और ये मुसाफत 50,000 साल में तय होने वाली है। दूसरी राय यह है कि ये दुनिया की कुल मुद्दत है, इब्तदाए अफरीनश से लेकर वकूए कयामत तक। इससे कितनी मुद्दत गुजर गई और कितनी बाकी है इसको अल्लाह ही जानता है, जब से दुनिया बनी और जब तक दुनिया रहेगी पूरी मुद्दत मुराद है। तीसरा कॉल यह है कि इससे मुराद है दुनिया और आखिरत के दरमियान का फासला, दुनिया और आखिरत के दरमियान का जो फासला है। चौथी राय यह है कि असल में यह कयामत के दिन की मिकदार है, तो काफिरों पर यह योम हिसाब 50,000 साल की तरह होगा लेकिन मोमिन के लिए दुनिया में एक फर्ज नमाज पढ़ने से भी मुख्तसिर होगा। और मसलन आप देखें कि हदीस से पता चलता है कि एक हदीस में जकात अदा ना करने वाले को कयामत के दिन जो अजाब दिया जाएगा, इसकी तफसील बताते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहां तक कि अल्लाह अपने बंदों के दरमियान फैसला करेगा ऐसे दिन में जिसकी मुद्दत तुम्हारी गिनती के मुताबिक 50,000 साल की होगी। तो अब इस तफसीर की रूह से फी योमिन के मानी क्या है कि इसका ताल्लुक जो है वो अजाब से है और वो अजाब वाकया होने वाला है कयामत के दिन और वो दिन होगा काफरों पर 50,000 साल की तरह भारी। तो इस तरह मुफस्सरीन ने इसके मुख्तलिफ मानी जो हैं वो बयान किए हैं। लेकिन फिर सारी बात का निचोड़ क्या है कि कभी अल्लाह ताला 50,000 साल कहते हैं, कभी जो है वो 1,000 साल कहते हैं। तो मुफस्सरीन ये कहते हैं कि असल में ये जो अजाब होगा तो इसकी हकीकी मिकदार जो है वो कुफर और शिर्क के मुताबिक उसका मर्तबा होगा और उसका तूल होगा। जैसे दुनिया में लोगों ने कुफर किया, शिर्क किया, अल्लाह की नाफरमानी की, तो वो दिन लोगों को उसकी लंबाई ऐसे महसूस होगी, उसकी शिद्दत और दराजी ऐसे महसूस होगी, किसी के लिए 1,000 साल, किसी के लिए 50,000 साल, किसी को बहुत ज्यादा लगेगी, किसी को बहुत कम लगेगी। जैसे एक हदीस में यह भी आता है कि मोमिन को उस दिन इतना हल्का लगेगा जैसे एक फर्ज नमाज पढ़ने का वक्त होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरफ तसल्ली दी जा रही है, दूसरी तरफ अजाब के लिए जो जल्दी मचाने वाले हैं उनको डराया जा रहा है, उनको जो है वो झंझोड़ा जा रहा है कि जल्दी मत मचाओ, ये जो अजाब जो है इसका दिन जब आएगा, जब कयामत आएगी तो ये बड़ा ही शदीद दिन होगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया फसबिर सबरन जमीला, बस आप सबर कीजिए, अच्छी तरह सबर करना। सबर आपको पता ही है जम जाना, डट जाना, बर्दाश्त करना, और सबर कहते हैं असब्र इंदा सदमतिल उला, के सदमे की पहली चोट पर। मसलन जॉब चली गई, फौरन जब खबर मिले तो वावेला ना करना, शोर ना मचाना। कोई बीमारी का पता चला, खुदा ना खास्ता हार्ट की बीमारी है या किसी को कैंसर हो गया, उसी वक्त जो कैफियत होती है इंसान की, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस वक्त शोर मचाया, इधर उधर कहा, लेकिन फिर कहा कि अच्छा चलो अब मैं सबर करती हूं, तो ये सबर नहीं है। सबर क्या है? असब्र इंदा सदमतिल उला, ये सबर की तारीफ है कि सबर जो है वो सदमे की पहली चोट पर है। अच्छा, फिर अब इतना ही काफी था कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबर कीजिए, सबरन जमीला क्यों आ गया ताकीद के लिए? तो दूसरा जमीला के सबर किस दर्जे का करना है, जमील ब्यूटीफुल खूबसूरत आसन अच्छा। अच्छा, मुफस्सरीन ये कहते हैं कि जो सबरुन जमील है इसके अंदर तीन बातें पाई जाती हैं। नंबर एक ये कि कोई ताने देता है, कोई गालियां देता है, मजाक उड़ाता है, बुरा भला कहता है, तो उसकी सारी बातों को जो है ना ठंडे दिल से बर्दाश्त किया जाए। गर्मी के जवाब में गर्मी नहीं दिखानी, पत्थर के जवाब में पत्थर नहीं मारना। किसी ने कह दिया है कि आप खाइन हैं, आप झूठे हैं, आप बुरे हैं, इल्जाम लगा दिया, कुछ भी ठंडे दिल से बर्दाश्त करना है, ठंडे दिल से। दूसरी बात क्या है? तकलीफ पहुंचाने वाले को जबान से बुरा भला नहीं कहना। हम क्या कहते हैं, कोई एक पत्थर मारता है साथ ही दूसरा पत्थर मार के कहते हैं अच्छा अब सब्र नहीं करना तो फिर और क्या करना है, इसको सब्र सब्र नहीं कहते। और फिर सब्रे जमील का तो पास भी नहीं, पास से भी नहीं गुजरे, पत्थर की बजाय ईंट मारते हैं ना, कोई एक सुनाता है 10 सुनाते हैं, तो उसको जबान से कुछ नहीं कहना, उसको सब्र कहते हैं। ये दूसरा दर्जा। फिर तीसरा दर्जा क्या है, ये बड़ा मुश्किल है। अब हुआ क्या कि उसने सुना दी, हमने ली सुन, कहा नहीं कुछ, लेकिन ये के उससे तो नहीं कहते पर दूसरों से कहते हैं। तीसरा दर्जा ये है कि दूसरों से भी शिकायत नहीं करनी, दूसरों से भी शिकवा नहीं करना। तो सब्रे जमील ये बड़ा तलख है, ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा कड़वा है, लेकिन इसका फल बड़ा मीठा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि अहले मक्का, आपको जादूगर, साहिर, काहिन, मजनू, दीवाना, बुरा भला कहते हैं, सताते हैं, ईमान नहीं लाते, तो आप जो है फिक्र ना करें, जब अजाब आएगा कोई उसको हटा नहीं सकेगा। इनकी कुफर की शिद्दत के मुताबिक किसी के लिए अजाब मुख्तसिर होगा, किसी के लिए अजाब तवील होगा। और फिर क्या करना है, फसबिर सबरन जमीला, आप सबर कीजिए, सबरे जमील, ऐसा सबर कीजिए कि बहुत खूबसूरत। और आप देखें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबर कितना अच्छा था। और सबरे जमील किसने किया, हजरत याकूब अलैहि सलाम ने। और सबर किसने किया, हजरत अय्यूब अलैहि सलाम ने। तो ये मेरी और आपकी जिंदगी सबरे जमील की जिंदगी है। मोमिन की जिंदगी चौमुखी लड़ाई है, नफ्स से भी जंग है, शैतान से भी जंग है, घर के बाज़ूकात अंदर भी ऐसी कैफियत होती है, लगता है कि भरे हुए घर में, भरे खानदान में, भरे दोस्तों में तन्हा है, कोई समझ नहीं रहा, कोई मान नहीं रहा। एक औरत पिछले दिनों कह रही थी कि मैं तो उसी दिन मर गई थी जब मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी को 18-20 साल हो गए, मैं मर गई थी, मैंने अपने आप को मार दिया, मैंने सबर किया और आज मैं बादशाहत कर रही हूं खत्म करने के बाद।